वेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की तीसरी पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पत्री का मुख्य उद्देश्य है सत्य में चलना, और जिसके लेखक स्वयं यूहन्ना ही हैं। ये पत्री अतिथि सत्कार और सत्य पर चलने के लिए जोर देती है। सारा अंश में पूरी पत्री प्रथम शताब्दी की कलीसिया को इस बात की चुनौती देती है कि सत्य की साक्षी देना और सत्य पर चलना। जी हाँ, ये विषय आज भी कलीसिया के लिए व्यवहारिक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हो। प्रस्तुत है ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं, और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम बाइबल में से तीसरा यूहन्ना की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने दूसरा यूहन्ना की पत्री से अध्ययन किया, आज हम तीसरा यूहन्ना की पत्री को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं और दूर दराज में बैठकर भी एक साथ आपके वचन को सुन सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं। आज जब हम तीसरा यूहन्ना की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उनके आत्मिक आंखों को खोल दें, उनके कानों और हृदय को खोल दें, विचारों को खोल दें, ताकि प्रभु आपका वचन कानों से होकर उनके हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए, आपकी उपस्थिति को वे अधिकाई से महसूस करने पाए, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में दिखने पाए। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर आप अधिकाई से आशीष दें और प्रत्येक के जीवन से आप बोले बातचीत करें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, चंगाई की आशा में बैठे हैं। पिताजी, आप उन पर दया दृष्टि करें, उनके अपराधों को आप क्षमा करें, उन्हें भी एक अवसर दें, नया मन दें, ताकि वे चंगाई पाकर आपको धन्य कहने पाएं। अभी इसी वक्त उनके जीवन को आप छू लें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, अपनी महिमा लें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन पर आशीष देने के लिए। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसके प्रस्तावना और उसके कुछ पदों को हम लोग देखेंगे। इस पत्री का लेखक भी यूहन्ना ही है। मैं विनोदी मुद्रा में इस पत्री को तीन आंख का यूहन्ना कहता हूं कि एक प्रचारक ने वर्षों पूर्व यूहन्ना की पत्रियों को एक आंख का यूहन्ना, दो आंख का यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना की पत्री को तीन आंख का यूहन्ना कहा था। इन पत्रियों को स्मरण करने की इससे अच्छी विधि मुझे और कोई दिखाई भी नहीं देती है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि यूहन्ना ने इन पत्रियों को अंत में लिखा था, प्रकाशित वाक्य के भी बाद में। इसका अर्थ है कि ये पत्रियां सन 90 से 100 के मध्य लिखी गई थी। उनकी सही तिथि निर्धारित करना अति कठिन है। यूहन्ना ने तीनों पत्रियां बहुत ही कम अंतराल से लिखी थी। मेरे विचार में उनके मध्य का समय अधिक नहीं था। अपनी पहली पत्री में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के परिवार के सदस्य प्रेम के बंधन में बंधे होना चाहिए और बालकों को आपस में प्रेम रखना है। वह अति स्पष्ट कहता है कि यदि वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं। सांसारिक संबंधों में यह स्वाभाविक है। दूसरी पत्री में यूहन्ना एक भारी चेतावनी देता है कि संसार में भ्रष्ट धर्मी हैं, मसीह विरोधी हैं, अनेक पाखंडी हैं, और वह कहता है कि परमेश्वर की संतान उनसे प्रेम न करे। हमें अपने द्वार खोलकर उनके कल्याण की चिंता नहीं करना है। उन्हें पहचानना है कि वे कौन हैं। परमेश्वर की संतान को सुनिश्चित करना है कि जिनका वह सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, जिन्हें वे आर्थिक सहयोग देते हैं, दान देते हैं, वे परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ हैं या नहीं। यूहन्नार्थी सुसमाचार एक अध्याय उसके 14 पद में यूहन्ना कहता है कि वचन देहधारी हुआ। वह पहले कह चुका है कि वचन ही परमेश्वर था। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु देह में प्रकट होकर परमेश्वर हमारे मध्य में आया। परमेश्वर ने मानव देह में डेरा किया। मनुष्य जब तक इसे स्वीकार न करे उसे उद्धारकर्ता प्राप्त नहीं होगा। यदि प्रभु यीशु केवल मनुष्य था तो वह हमारा उद्धारकर्ता नहीं है। उसके जन्म, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान को स्मरण करने की हमें आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम जानें कि वह देहधारी परमेश्वर है, अवतारित परमेश्वर है, और उसके क्रूस के कार्य में हमारे उद्धार का सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है, क्योंकि वह जो है सो है, और क्योंकि वह मरकर सदेह फिर से जी उठा है। वे जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करते उनसे सहभागिता करना या कलीसिया का सहयोग देना आपके लिए उचित नहीं है। यूहन्ना इस पत्री में यहां तक कहता है कि उन्हें हमें नमस्कार भी नहीं करना है, उसकी यात्रा में सहायता भी नहीं करना है, न ही उसे सहायता देना है। यदि आप उन्हें सहयोग देंगे तो आप उसके कुकर्म में उसके साझेदार हैं। अतः परमेश्वर की संतान के लिए उचित है कि वह जाने कि वह किसे सहयोग दे रहा है। आप आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति को यीशु के नामे, परमेश्वर के नामे सहायता प्रदान ना करें। आप पहले उसे परखें और जानें। यह मैं नहीं, यूहन्ना कह रहा है, और वह चाहता है कि हम सही जगह पर परमेश्वर के लोगों को सहयोग प्रदान करें। अब यूहन्ना की यह तीसरी पत्री अनेक प्रकार से उसकी दूसरी पत्री से मिलती जुलती है। यह भी एक व्यक्तिगत पत्री है और इसका विषय भी सत्य ही है। वह एक बार सत्य को सर्वाधिक महत्व दे रहा है। जब सत्य और प्रेम एक दूसरे के आड़े आए तब सत्य ही को सर्वोपरि होना है। इसका अर्थ है कि झूठे शिक्षक या पाखंडी आपके प्रेम पात्र न बने। सत्य पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तथापि अन्य कुछ बातों में तीसरी पत्री दूसरी से भिन्न है। यह पत्री कुछ व्यक्तियों की चर्चा करती है। दूसरी पत्री में यूहन्ना कहता है कि सत्य का प्रयास करना अर्थपूर्ण है। किसी ने कहा है, परमेश्वर में मेरा जीवन उद्धार है, परमेश्वर के साथ मेरा जीवन सहभागिता एवं सहचार्य है, और परमेश्वर के लिए मेरा जीवन सेवा है। इस पत्री में परमेश्वर के लिए मेरा जीवन का विवेचन किया गया है, और यह पत्री सत्य में आचरण एवं कार्य के विषय है। प्रेम गंदा भी हो सकता है, विकृत हो सकता है, और गलत भी समझा जा सकता है, यदि सत्य की सीमा में व्यक्त ना किया गया हो या ना किए गए या ना किया जाए। मेरे प्रियो, आपको सचेत और ध्यान होने की आवश्यकता है कि आप जाने कि आप क्या सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। वर्षों पूर्व मैंने अपने प्रचार में यूहन्ना की तीसरी पत्री के दो व्यक्ति दियोत्रिफेस और दिमेत्रियुस तथा देमास, जिसके विषय पौलुस दूसरा तीमोथियुस की पत्री और कुलुसियों की पत्री 4:14 में, फिलिमोन 23:24 में वर्णन करता है, का संदर्भ दिया था। देमास पौलुस के साथ सहकर्मी था, परंतु सेवा का त्याग कर चुका था क्योंकि उसे संसार में और संसार से लगाव हो गया था। तीनों ही नाम द द से आरंभ होते हैं। मुझे गयुस का भी उल्लेख करना था। यदि उसका नाम दयुस होता तो मैं उसे भी जोड़ लेता। मेरे मित्रों, ये तीनों पुरुष हमें कुछ अति रोचक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रथम शताब्दी के विश्वासी कैसे पहचानते थे? पहली शताब्दी के अंत में वे विश्वास को कैसे थामे हुए थे? क्या वे सब शहीद हुए? क्या वे सब सद्गुणों के शिरोमणि थे? क्या वे सब मसीह के योग्य अनुयायी थे? क्या वे विश्वास के आदर्श थे? पहली 3 शताब्दियों में लाखों लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। जी हां, उनमें से सामान्य विश्वासी कैसे निकले? इस पत्री में हम 2 असाधारण विश्वासी देखते हैं, गयुस और दिमेत्रियुस। ध्यान दीजिए, गयुस और दिमेत्रियुस, वे परमेश्वर के प्रति विश्वास में दृढ़ थे। एक और व्यक्ति है जो सराहनीय नहीं है। वह विश्वास में दृढ़ नहीं था। वह कुछ भी रहा हो, सत्य पर अटल नहीं था। तो आइए हम देखते हैं, गयुस एक मन भावन भाई। 3 यूहन्ना की पत्री 1:1 में लिखा हुआ है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है मुझ प्राचीन। जैसा उसने अपनी दूसरी पत्री में अपने आप को प्राचीन कहा था, वैसा ही वह इस पत्री में भी अपने आप को यूहन्ना प्राचीन कहता है। यह उसकी आयु के संदर्भ में भी हो सकता है, जैसे मैं बूढ़ा हूं, क्योंकि उसकी आयु इस समय तक 90 वर्ष से अधिक है। प्राचीन का अर्थ कलीसिया का वरिष्ठ पद भी हो सकता है। वह यह भी लिख सकता था कि वह एक प्रेरित है, परंतु गयुस उसका मित्र था, और मित्र को पत्र लिखते समय आप अपना पद नहीं दिखाते हैं। मैं भी अपने पुराने मित्रों को पत्र लिखते समय अपना नाम लिखता हूं। इसी प्रकार यूहन्ना भी एक मित्र को पत्र लिख रहा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम। ध्यान दीजिए, प्रिय गयुस के नाम, मुझे यह संबोधन अति प्रिय लगता है। गयुस कलिसिया का एक प्रिय भाई था। वह सत्य के लिए खड़ा होता था और यही नहीं, वह सत्य के निमित्त सेवा भी करता था। यह एक मनुष्य है जो प्रेममय आचरण के साथ प्रेमपूर्ण सेवा करता था। वह प्रेम का प्रदर्शन करता था। यदि आपको सही काम करना है तो आपको सही सोचना भी है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सच है, क्योंकि जब तक आप सही नहीं सोचेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक सोच नहीं आएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं तीसरा यूहन्ना की पत्री 1:2 में, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वह कहता है प्रिय। यूहन्ना गयुस के बारे में बहुत चिंता करता था और उसके साथ घनिष्ठ संबंध भी रखता था, क्योंकि यहां वह फिर से उसे प्रिय कहता है। कहता है मेरी यह प्रार्थना है कि तू भला चंगा रहे। यूहन्ना अति स्पष्ट कहता है कि वह गयुस की स्मृति में उसकी चिंता ही नहीं, उसके स्वास्थ्य की भी और प्रार्थना भी उसके लिए करता है। वह उसके प्रति चिंता रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गयुस एक समृद्ध मनुष्य था। इससे प्रकट होता है कि गयुस का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, और जिसके लिए यूहन्ना उससे कहता है कि वह उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता है। यहां पर लिखा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। यूहन्ना को उसके आत्मिक विकास की भी अधिक चिंता थी। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासी आत्मिकता में अस्पष्ट हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य तो अति उत्तम है, परंतु आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि वे आत्मिक रीति से अस्वस्थ हैं। उनका जीवन भला चंगा नहीं है। जिस प्रकार से उनका शरीर दिखता है, वैसे उनका आत्मिक जीवन नहीं है। परमेश्वर की संतान के लिए दोनों बातें आवश्यक हैं। हम स्वास्थ्य के महत्व को तभी समझते हैं जब हमारा स्वास्थ्य गिर जाता है। आत्मिक स्वास्थ्य भी अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर के लिए है, उसी प्रकार आत्मा के लिए पवित्रता है। आत्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है पवित्रता। जी हाँ, पवित्रता का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को ज्ञान में विकास करना। यूहन्ना के युग में अनेक विश्वासी परमेश्वर के वचन का प्रचार और सेवा करते थे, और इस सेवा के निमित्त उन्हें जगह जगह पर जाना पड़ता था। गयुस उनके लिए अपने द्वार खुले रखता था और उनका अतिथि सत्कार भी अच्छे तरीके से किया करता था। वह एक उदार मनुष्य था। वह प्रेम एवं सत्य का आचरण करता था, परंतु वह उन्हें परखता भी था। अपनी शारीरिक दुर्बलता के उपरांत भी वह अतिथि सत्कार में पीछे नहीं हटता था, और यही कारण है कि यूहन्ना उससे कहता है कि वह शारीरिक रीति से तंदुरुस्त रहे, भला चंगा रहे और आत्मिक रीति से भी बढ़ता जाए। तीसरा यूहन्ना की पत्री 1:3 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मेरे मित्रों, इन भ्रमणशील प्रचारकों और सेवकों ने यूहन्ना को गयुस की सेवा के विषय में जानकारी दी। उसे बताया कि वह बड़ा दयालु मनुष्य है और सत्य का आचरण रखता है। उन्होंने कहा आप उसकी कलीसिया में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि वह एक अति भला मनुष्य है, एक अच्छा विश्वासी है। वह पैसे वाला तो है, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा है। आज लोग पैसे वाले तो हैं, परंतु उनका दिल बहुत छोटा है। गयुस के साथ अंतर यही है, आप में और गयुस में। कहता है, उसने मुझे बड़े प्रेम से अपने घर में रखा। उस युग में मैंने कहा कि होटल नहीं थे, रोमी साम्राज्य में सराय थे, जहां बहुत सारे खटमल भी थे, और वे स्थान पाप का घर था। अतः वे प्रचारकों को अपने घरों में ठहराते थे और उनकी देखभाल करते थे, और गयुस भी ऐसा ही करता था। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। गयुस के विषय में प्रचारकों की यही गवाही थी। लिखा है कि वह सत्य पर चलता है, सत्य अर्थात प्रेरितों की शिक्षा और उसका आचरण। विश्वासी की यही पहचान है कि वह सत्य में चलता है। विश्वासी के जीवन की पराकाष्ठा यही है, सत्य और ज्योति में चलना। क्या आप सत्य पर चलते हैं? सत्य पर चलने का अर्थ है उचित आचरण और भाइयों से प्रेम करना। मेरे मित्रों, आज हम सब इन बातों को बहुत कम देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग प्रेम करते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें निस्वार्थ प्रेम करना है, सत्य आचरण पर हमको चलना है, ताकि हमारे जीवन की गवाही दूसरों तक पहुंचने पाए और लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जिस प्रकार से गयुस को उन प्रचारकों के द्वारा से उनके कार्यों को देखने के बाद यह संदेश यहुना तक पहुंचा, और यहुना ने इस बात को जाना कि गयुस उनकी देखभाल करने में कितना सफल रहा है, और यहां तक कि वह परमेश्वर के वचन को भी थामे हुए है और सत्य की बातों पर चल रहा है। मेरे प्रियो, आज हम सबके जीवन के लिए भी इन्हीं बातों का होना अनिवार्य है। हम परमेश्वर के वचन पर चलें, उसके सत्य पर आचरण करें, अपने भाइयों से अर्थात अपने विश्वासी भाई और बहनों से प्रेम रखें, पवित्रता का प्रेम रखें, पवित्रता को बनाए रखें। इससे परमेश्वर हमें आशीषित करता है। यहां पर हम यही देख रहे हैं, प्रचारक ही नहीं अन्य कोई भी विश्वासी गयुस के शहर में आता तो देखता कि गयुस का घर उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। गयुस में आत्मिक विवेक था, वह सच्चे विश्वासी को पहचान लेता था, वह पाखंडी और सच्चे विश्वासी में अंतर कर सकता था। आपको केवल यह देखना है कि उसका संबंध प्रभु यीशु के साथ कैसा है। जी हां मेरे मित्रों, आज जब आपके घर में प्रभु के सेवक के रूप में लोग आते हैं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाते हैं कि वह सचमुच परमेश्वर का दास है, दासी है या नहीं? या यूं ही आप उन्हें अपने घर में रखते हैं और आर्थिक रीति से सहयोग करते हैं और उसे वहां से विदा करते हैं? गयुस ऐसा नहीं था। वह उन्हें पहचानता था कि वे सही शिक्षा देने वाले लोग हैं या नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं या नहीं, परमेश्वर के साथ अर्थात प्रभु यीशु के साथ उनका संबंध कैसा है। वह इन सारी बातों को जानने परखने के बाद ही उनकी सेवा करता था, ना कि किसी पाखंडी को वह अपने घर में लाता था। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी यहुना इस बात का चेतावनी देता है, आगाह करता है कि हम इन बातों पर सचेत हो जाएं कि हम किस रीति से किसकी सहायता कर रहे हैं। अपने हर एक व्यवहार में उचित ठहरने के लिए आपको प्रभु यीशु के विषय सही धारणा रखना है। विश्वासियों की यह गवाही थी, भाई गयुस ने हमें पहले तो परखा कि हम प्रभु यीशु के ईश्वरत्व में विश्वास करते हैं या नहीं, उसकी कुंवारी से जन्म को स्वीकार करते हैं या नहीं, और उसकी उद्धारक मृत्यु एवं सदेह पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं या नहीं, और उसने हमें घर ले जाकर हमारी भरपूर सेवा की। उसने देखा कि हम भी भाइयों से प्रेम रखते हैं। जी हाँ, गयुस की गवाही कैसे महान थी। आज आपकी गवाही क्या है? क्या जब एक प्रचारक, एक सेवक आपके घर से दूसरे घर में जाता है, दूसरे स्थान में जाता है, तो क्या वह आपकी गवाही इस प्रकार से बांटता है? सिर्फ सेवा करना ही मात्र काम नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में, उसके भय में भी बढ़ते जाना है, बने रहना है, ताकि आपकी गवाही दूसरों तक पहुंचने पाए। मेरे मित्रों, यह क्या ही भली बात है कि गयुस अपने घर में आने वाले प्रचारकों की सेवा करता था, सत्कार करता था और उनकी सहायता करता था और अपने जीवन की गवाही उन पर प्रकट करता था। क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? क्या अपनी गवाही, अपना आचरण दूसरों के द्वारा से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आपका जीवन, आपका आचरण उत्तम है? मेरे प्रिय श्रोता भाई बहनों, यदि आज ऐसा नहीं है तो आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में, इस वचन के द्वारा जो यूहन्ना की तीसरी पत्री में हम गयुस के जीवन में देख रहे हैं, हम भी अपने जीवन में प्रभु से मांगे, ताकि हम भी उसके समान एक सच्चे विश्वासी, गवाही देने वाले विश्वासी बन सके। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत किया है, आप एक सही निर्णय ले, उसकी संगति में बढ़ें और परमेश्वर को धन्य कहें। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।